नमस्कार। ईसाइयों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और खान हसनैन आकिब सर से हम ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, खान हसनैन आकिब सर गुलाम नबी आज़ाद कॉलेज पुसत में कार्यरत है और उर्दू पढ़ाने का और सीखने का, लिखने का उनका बहुत बड़ा अनुभव है। ये मैं खाली उनके तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो अपने को बता रहे हैं, उससे हमको पता चलता है कि खान साहब ने बहुत अच्छी तरह से ये सब पढ़ा है और उनके पास ये जो स्किल है, ये जो हुनर है कि वो सिंपल यानी बहुत सी सीधी सादी उर्दू में वो आप तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए तो मैं बहुत उन पर खुश हूँ। सर, हम इंशाए की बात कर रहे हैं और एक मुझे जिक्र आ रहा है कि शराफत जो वजरत अली की संदलवी का जो इंशाइया है
जी।
तो वो किस तरह से अलग है और इंशाइयों से, और साहब उसमें क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में जरा हमको बताइए।
जी, आपने सवाल में ही एक बड़ा अच्छा टुकड़ा जोड़ दिया है कि ये किस तरह से दूसरे इंशाइयों से अलग है। तो एक मानों में ये दूसरे इंशाइयों से अलग है कि इसका जो उन्वान है ये अपने आप में बहुत संजीदगी लिए हुए है। जैसे आमतौर से दूसरे जैसे कुत्ते, तो समझ में आया था कि ये बहुत संजीदा मौजू नहीं है, लेकिन शराफत जो है वो उसको समझ में आता है कि यार बहुत ही इस पर बहुत संजीदगी से गुफ्तगू की होगी इंशाइया निगार ने। तो वजाहत अली संदेलवी ने जो शराफत के बारे में यहाँ पर दो उसके अकसाम बताई हैं, दो किस्में बताई हैं कि शराफत दो तरह की होती है। एक तो होती है शराफत जो फितरी होती है, एक इंसान है जो फितरतन शरीफ है, और दूसरी किस्म होती है कि जो फितरतन नहीं है वो बनने की कोशिश करता है शरीफ। ये दो टाइप की होती है शराफत। तो फिर ये दोनों टाइप की शराफतों के उन्होंने फिर आगे चलकर उसको डिटेल तफसील में उसको बयान किया है कि वो शराफत जो फितरी होती है वो मौरूसी होती है। मौरूसी मतलब वो हेरिडिटरी होती है। उसका बाप भी शरीफ था, उसका दादा भी शरीफ था, उसका परदादा भी शरीफ था। तो ये अब फिर उसके साथ साथ जो आदमी इतना नस्लों से शरीफ है, तो फिर उसकी अगली नस्ल में वो शराफत की खसूसियात क्या पाई जाती हैं, हम शराफत किस चीज को कहेंगे। तो अभी एक साहब ने शराफत के बारे में यहां पर अगर हम देखें कि वजाहत अली संदेलवी नहीं यहीं पर कही है कि भी शराफत जो है कभी कभी वो बुजदली भी कहलाई जाती है कि एक शरीफ आदमी है तो वो किसी बात को टाल देना चाहता है क्योंकि उसकी शराफत उसको उलझने नहीं देती,
नहीं देती।
लेकिन दूसरे लोग समझते हैं कि ये बुजदिल है,
बुजदिल है,
जबकि वो बुजदिल होता नहीं है। एक अंग्रेजी में मुझे कहावत उस पर याद आ रही है कि बी काइंड टू अदर्स, समटाइम्स योर काइंडनेस कैन बी टेकन एज योर कावर्डनेस, स्टिल बी काइंड। कि दूसरों के साथ मेहरबानी का बर्ताव करो, कभी कभी तुम्हारी ये मेहरबानी और शराफत को लोग बुजदिली समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम शराफत दिखाओ, मेहरबानी से पेश आओ। तो कोई क्या समझता है इससे कोई बहस नहीं। वो चीज जो एक है, क्योंकि शराफत एक ऐसी चीज है जो एक कोहिनूर है, वो सबके हाथ नहीं आती, वो तो जिसके यहां चली आई चली आई, जिसके पास है वो है, वरना आजकल हम तो शराफत ढूंढने से नहीं मिलती है। कि शराफत किसे कहते हैं अभी आजकल? तो ये है कि आज तो हमने बात बात पर उलझना, बात बात पर झगड़ना, बात बात पर बुरा मानना, ये सब सीख लिया। ये शराफत के जुमरे में नहीं आता। मैं एक चलते चलते शराफत की एक आला मिसाल आपको बच्चों को आपको दे दूं, जो मैं हमेशा कोट करता हूं कि मैंने एक किताब में ये बात पढ़ी थी, वाकया अंग्रेजों के पहले का, कि इलाहाबाद और रामपुर में उस वक्त नवाबियां राज रजवाड़े ये सब थे। तो इलाहाबाद और रामपुर ये दोनों के नवाब थे। इलाहाबाद में कोर्ट थी, वो दोनों दोस्त थे, रामपुर के नवाब और इलाहाबाद के नवाब साहब, और इतने गहरे दोस्त कि रामपुर के नवाब साहब इलाहाबाद आते तो उनके यहां रुकते, ये जाते तो वहां उनके यहां रुकते, घरेलू ताल्लुकात थे। एक दिन पता नहीं किस बात पर रामपुर वाले नवाब साहब को क्या गुस्सा आया पता नहीं या क्या हुआ, तो उन्होंने इन पर मुकदमा इलाहाबाद की कोर्ट में दायर कर दिया। अब वहां मुकदमा दायर कर दिया, दो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, वो इलाहाबाद वाले नवाब साहब इंतजार करेंगे, रामपुर वाले नवाब साहब आएंगे, लेकिन वो आई नहीं। तो उन्होंने नौकर से कहा कि जरा जाकर देखो कि नवाब साहब आ रहे हैं या नहीं, ये तबीयत खराब तो नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोर्ट में आते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे। तो वो दूसरी तीसरी पेशी पर उन्होंने कहा कि आपकी तारीख कब है, तो वो कोर्ट की तारीख पर उन्होंने कहा कि चलो ये बग्गी वग्गी में उस वक्त जो भी तरीका था उसमें ये इलाहाबाद वाले नवाब साहब कोर्ट में पहुंच गए। उधर से रामपुर वाले नवाब साहब आए, उन्होंने देखा अपने पुराने दोस्त को और जिनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा कर दिया था, उनको देखा और देखकर नजर बाजू कर ली, फेर ली, तो जाकर आगे खड़े हो गए। ये इलाहाबाद वाले नवाब साहब गए और उन्होंने कहा कि हजरत आप कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि जी जी कुछ तो। अरे कहा क्या हजरत, आपने मुकदमा कहाँ दायर किया? कोर्ट में। अरे हमारे ताल्लुकात तो घर के हैं ना, तो मुकदमे को कोर्ट में रखिए, हमारे ताल्लुकात घर के हैं, आप घर पे आइए।
क्या बात,
ये शराफत थी। उसके बाद उन्होंने फौरन वो मुकदमा वापस लिया और फिर दोस्त हो गए दोनों भी। शराफत ये थी,
शराफत
कि देख मामला कोर्ट का मामला कोर्ट में और घर के मामला घर पे,
घर पे।
इसको दोनों को मिक्सअप नहीं करना।
सही बात।
और आज हम जरा सा कुछ हो गया तो हम तो वो, अगर जरा सा दो पांच पैसे का अगर ऊंच नीच हो जाए तो हम तो घर तक और कहां कहां तक चले जाते हैं। तो शराफत ये नहीं होती है। शराफत ये होती है कि इंसान किस बात को उसकी उसका जमीर इजाजत देता है, उसकी आत्मा, उसका ये सब, उसको उसको वो मां खुद लगता है अंदर से, एक एहसास आता है कि ये क्या चीज है। तो इसी उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है वजाहत अली संदेलवी ने कि इंसान की शराफत जो है वो अगर वो फितरी है तो वो भी समझ में आ जाती है, और अगर वो नकली है कि जो सिर्फ वक्ती तौर पर दिखाने के लिए शरीफ बन रहा है तो वो फौरन अपने वाली पर आ जाता है।
सही बात है, सही बात है।
क्योंकि कैरी जो है वो पत्तों की आड़ में बहुत ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती।
क्या बात है, क्या
तो इस तरह से नकली शराफत भी जो है बहुत ज्यादा देर तक
नहीं टिकती,
छुप नहीं सकती। एक आदमी फौरन अगर वो उसने काफी देर तक कहा गया अब शराफत क्या है, तो कहा गया साहब आइए साहब तशरीफ रखिए बैठिए कैसे मिजाज है। नकली शराफत यहीं तक रहती है, इसके आगे नहीं जाती।
सही बात।
जैसे मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई तो वो फौरन तू तकार पर आ जाएगा, लेकिन असली जो शराफत होती है ज्यादती भी कोई कर दे अगर तो वो अपनी हद से बाहर नहीं निकलती।
तो संदेलवी साहब का ये जो कहना है कि शराफत की वाकई में आज बहुत जरूरत है। जैसे कि झगड़ा होता है उसके उसका जो रूपांतरण है वो दंगे में हो जाता है, और दंगे में हो जाता है तो मोहल्ले बंद पड़ जाते हैं, दुकानें बंद पड़ जाते हैं, ये एक शराफत के कारण ना होने के कारण होता है। तो ये शराफत अपने जीवन में, सामाजिक और कौटुंबिक जीवन में और देश की उन्नति के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, जैसे कि संदलवी साहब ने कहा। और वाकई में हमने शराफत का बर्ताव हर दिन करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, ताकि अगर आप शराफत दिखाए तो कोई आपको यानी कोई शक की नजर से ना आपको देखे। आजकल ऐसा हो गया कि अगर मैं आपको शराफत दिखाऊं तो आपको शायद शक हो जाएगा।
हाँ, कि बुजुर्ग तो
हाँ। तो इस तरह का जो शराफत का आज जिस मोड़ पे आ गई है शराफत, वो वाकई में बहुत ही एक समस्या बन गई।
शराफत की एक मिसाल मैं ये भी दूं सर आपको कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा से मैं ये कहता रहता हूं कि तुम जिस तरह की बातचीत यहां करते हो, जिस तरह का तुम्हारा सलूक होता है, बिहेवियर और एटीट्यूड होता है, ये हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी बातचीत का तरीका जो है वो हमको बता देता है कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं।
कैसे है, सही बात, सही बात।
क्योंकि वो
सही बात है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कल्चर घर का ही लेकर
निकलते हैं,
तो अपना बर्ताव ऐसा ही शराफत वाला होगा। सही बात है सर। सर शराफत के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गाली जो इंशाइया है,
जी जी,
शराफत की बात की, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी गाली सुननी भी पड़ती है। मैं कितना भी शराफत से बर्ताव करूं, लेकिन ऐसे मौके आ जाते हैं जिंदगी में कि कोई गाली देते आए, तो इस इंशाइया के बारे में जरा हमको बताइए।
देखिए ये गाली जो है ये शराफत के एकदम उल्टा है,
उल्टा है,
है ना। जहां गाली आ जाएगी वहां शराफत चली जाएगी, और जहां शराफत होगी वहां से गाली नहीं रहेगी,
गाली आएगी नहीं।
तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं, लेकिन दोनों पहलू एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, कंपल्सरी है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट भी। तो गाली जो है, अब जाहिर सी बात है कि गाली कोई अच्छी बात तो है नहीं। गाली जो है वो इंसान कितना निचले दर्जे का है वो उसकी गाली बता देती है कि उसकी ज़हनियत बोलिए या जुबान बोलिए, ये जो भी है। तो इसमें एक जो खास बातें उन्होंने बताई हैं कुछ पॉइंट्स, रामलाल नाभवी ने जो उर्दू के इंशाया निगार थे, उन्होंने कहा कि गाली एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़हीन होने की जरूरत नहीं, बहुत अकलमंद होने की जरूरत नहीं है, और गाली की खासियत यह है कि इसको याद नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद याद हो जाती है।
सही बात।
फिर यह है कि इसके लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, ये बगैर स्कूल गए ही आपको सीखने के लिए आपको कोई भी चीज स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन गाली की खास बात यह है कि बगैर स्कूल गए सीख सकते हैं आप। फिर उन्होंने कहा कि भाई गाली शुरू कैसे होती है, तो एक अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि गाली अगर एक उन्होंने कबीर का दोहा उन्होंने वहां पर कोट किया था मुझे याद आ रहा है, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर गाली आती है तो वो एक है और पलट कर जाती है तो अनेक
अनेक है। सही बात है।
क्यों कि एक तरफ से गाली एक तरफ से आई मुझ तक और बस आई, वापस नहीं गई तो एक ही है, लेकिन जब वो पलट कर गई तो फिर उसके बाद
दुगना बढ़ जाती है,
शुरू हो जाएगा वो सिलसिला और फिर एक से अनेक होते चले जाएंगे, फिर मामला शुरू हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भी ये चलिए अगर दो जगह कहीं पर बातचीत हो रही है, फिर वो बातचीत जो है वो गाली गलौज में तब्दील हो गई, फिर एकदम गाली गलौज जो है उसमें बीच में मुझ जैसा या आप जैसा एक आदमी आया और कहा कि साहब ये क्या लगा रखा है आपने, तो बीच में सुलह सफाई उसने करवाने की कोशिश की तो पता चला कि उसको भी शुरू हो गई गाली। तो या तो फिर अगर वो शरीफ आदमी है तो वो हट जाएगा, वरना फिर वो भी उस जंग में शामिल हो जाएगा।
सही बात।
तो ये गाली इतना एक ऐसा अमल है, फिर इसमें एक नई नई इजादत होती रहती है, गाली जो है गाली में नई नई इजादत होती रहती है, बहुत सारे लोग जो है वो गालियों में इजाद करने के साइंस में, हम लोग हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानियों के खासतौर से बात यह है, मैंने ये भी देखा है कि छोटे छोटे देहातों में भी हम कुछ इजाद करें ना करें, कुछ पैदा करें ना करें, गालियां बहुत अच्छी अच्छी पैदा करते तो अच्छी अच्छी, तो मैंने इंशाई की लैंग्वेज में कहा कि गालियां बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि गाली तो अपने आप में अच्छी हो ही थी,
हो ही नहीं सकती,
वो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए, लेकिन ये इंशाई की लैंग्वेज ऐसी होती है।
सही बात।
तो ये छोटे इसमें मैंने कि उसमें उन्होंने फिर गालियों का एक पूरा एक बताया है कि भी गालियां जो है वो किस तरह से नई नई जगह पर नई नई गालियां बनती हैं, नए नए लोग हैं, किस किस कबीले के किस किस तरह के लोग होते हैं, किस किस मिजाज के लोग होते हैं, फिर गाली जब देते हैं तो फिर कैसे शुरुआत कहां से होती है, फिर वो किस तरह से उसमें उलझ रहे हैं, फिर आखिर में इस तरह से आखिरी में, लेकिन यह है कि गाली गलौज जो है वो एक तो दुश्मन बनाती है इंसान को दूसरे का, और फिर आखिर में शर्मिंदगी पे खत्म होता है मामला। तो फिर ऐसा काम क्यों किया जाए जिसमें आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए गाली गलौज से ये तो एक इंशाइया है जिसमें आप पढ़ें और मजा लें, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ उसमें मैसेज दिया गया है, पैगाम दिया गया है, उस पैगाम को समझकर कोशिश करें कि अगर कहीं हमारे आसपास अगर वो आदत गाली गलौज हमको सुनाई देती है तो हम कोशिश करें कि उसको किसी अच्छे तरीके से समझाकर उसको दूर करने की कोशिश की जाए जहां तक हो सके, वरना मुझे क्या लेना देना, ये मिजाज ने हम हिंदुस्तानियों को खराब कर दिया, पूरे मुल्क को।
सही बात।
मुझे क्या लेना देना, इसी वजह से आज ये हमारे सामने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जान से जा रहे हैं और हम गुजर जा रहे हैं पास से, खुदा ना करे अगर हमारे ही कोई रिश्तेदार रह रहा हो तो।
सही बात है।
तो ये चीज है कि हमने पूरे एक बहसियत कौम सोचना चाहिए, ना कि अपना अपना।
सही बात है। तो गाली देने की इच्छा भी ना रखो।
हाँ।
और गाली मिले भी तो अपने आप को कंट्रोल करो,
कंट्रोल
ताकि वो एक क्या निकला बन जाए।
सही बात है।
सर, मोटरसाइकिल के ये जो इंशा है मोटरसाइकिल, इसके बारे में जरा बताइए।
मोटरसाइकिल का पहला रूप जो है इसमें दो अल्फाज आते हैं, मोटर और साइकिल, है ना। तो जब लिखते हैं हम इसको तो मोटरसाइकिल लिखते हैं, लेकिन आने में साइकिल पहले आई।
सही बात।
साइकिल पहले इजाद हुई और मोटरसाइकिल बाद में इजाद हुई, क्योंकि साइकिल आई फिर मोटर बनी और फिर दोनों मिलकर मोटरसाइकिल बने। तो साइकिल पर से मुझे साइकिल, वो जो इसमें एक कुत्ते जो जिनका है पितरस बुखारी का, तो उन्हीं पितरस बुखारी का एक साइकिल पर एक बहुत अच्छा मजमून है। तो चूंकि इसके हवाले से मैं ये कहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को कि वो उनका वो मजमून साइकिल पर वो बहुत अच्छा है, आप पढ़ें और देखें कि किस तरीके से उन्होंने एक साइकिल एक आदमी ले जा रहा है, वो खराब हो गई या जंग लग गया ये तो कैसे, जब बेचने जाता हो तो क्या मसले आते हैं, जब वो चलाता तो क्या मसले आते हैं। तो इस तरह से बहुत उसको बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो बहुत हंसा था और अभी भी याद करके बहुत हंसता हूं उसको, साइकिल को, क्योंकि वो मेरे पास भी साइकिल थी, बाद में मोटरसाइकिल आई मेरे पास। तो आपके पास भी साइकिल थी या नहीं पता नहीं।
सही बात है, सही साइकिल थी ना।
देखिए सबके पास साइकिल थी तो आप मोटरसाइकिल पे आए।
सही बात है।
तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज को मोटरसाइकिल जो है, साइकिल के हवाले से मैंने मतलब मोटरसाइकिल के हवाले से साइकिल पर बात कर दी मैंने, तो वो भी आप पढ़ें। और मोटरसाइकिल जो है यहां पर उस पर एक इंशाइया लिखा है। मैंने जैसे आपसे कहा भी शुरुआत में कि इंशाइया निगार किन किन, आपने सवाल जो बहुत अच्छा किया था कि भी किन किन मौजूदात पर कलम उठाता है इंशाइया निगार, तो वो मैंने ये कहा था कि इंशाइया निगार अपने आसपास के मौजूद पर कलम उठाता है। तो साइकिल हो या मोटरसाइकिल, वो आसपास का मौजू है। हमारे पास इसमें जितने मौजूदात हम देखेंगे वो सब हमारे आसपास के मौजूदात, रोजमर्रा के मौजूदात है। हमको अगर 5 रुपए का समार लाने जाना है तो मोटरसाइकिल को किक मार के 20 रुपए का पेट्रोल जलाकर 5 रुपए का समार लाते।
सही बात।
तो मोटरसाइकिल इतनी जिंदगी में हमारी जरूरी हो गई है।
जरूरी।
लेकिन अब यहां से इंशाइया शुरू होता है, यहां से शुरू हो रहा है शाह अली अकबर कासिद का लिखा हुआ इंशाइया। तो मोटरसाइकिल को उन्होंने बनाया है उसका मौजू कि मोटरसाइकिल की अहमियत क्या है। उन्होंने यही बताया है कि मोटरसाइकिल जो है वो इंसानी जिंदगी में आजकल एक बिल्कुल जरूरी चीज बन गई है। कहीं ये जरूरत है और कहीं ये शान है।
सही बात।
किसी मोटरसाइकिल का ऐड आता था कि शान की सवारी।
सही बात, सही बात।
तो जबकि हमारे लिए तो वो जरूरत की सवारी है, शान की सवारी नहीं है।
सही बात।
तो ये चीज है कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल चलाइए, लेकिन एक अहम पहलू जो उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल जो है वो हवा में नहीं चलती और ना ही पानी पर चलती है, उसके लिए जरूरत होती है पेट्रोल की, और पेट्रोल रोज बरोज जो महंगा होता जा रहा है, तो उस पर उन्होंने उसको कटाक्ष किया है मोटरसाइकिल के जरिए से।
क्या बात है।
कि मोटरसाइकिल को चाहे तो आप हाथ से लोड कर ले जाइए, लेकिन पेट्रोल डालने के लिए आपके पास पैसे, मतलब इतना महंगा हो गया पेट्रोल। तो ये सारे उन्होंने मोटरसाइकिल के फवायद बताए हैं उसमें। ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है कुछ चीजें, तो मैं तो सिर्फ आपको, हमारे तलबा को बताने के लिए इसके कुछ चीजें बता दे रहा हूं, इसलिए कि कुछ चीजें उनके जहन में आ जाएं कि इसका मौजू क्या है। अदरवाइज ये तो आप एंजॉय कर सकेंगे सिर्फ इसको पढ़कर, क्योंकि आपको पढ़ना है तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि इसकी जुबान, दूसरे ये कि जुबान का इस्तेमाल, सिर्फ जुबान नहीं, जुबान को किस तरीके से उन्होंने चालाकी और चाबुक दस्ती के साथ इस्तेमाल किया है कि आपके होठों पर हंसी खिल जाती है। और फिर तीसरी जो और सबसे अहम चीज है कि वो इस इंशाइये के जरिए आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं।
सही बात है।
ये सबसे अहम चीज है। तो ये तीन चीजों का एक मुसल्लस बन रहा है और इस मुसल्लस को आपको गौर से देखना है।
तो और अब हमारे जो तलबा है वो हर बात बात पे, कहीं घूमने निकले तो भी पैदल ना जाते हैं लेकिन मोटरसाइकिल उड़ाते हुए जाते हैं।
सही।
तो ये भी बहुत, ये जो आदत है वो भी बहुत खराब है। जैसे कि हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा एक दिन मुकर्रर रहता है जिसके दिन जो फोर व्हीलर है
जी,
वो रास्ते में नहीं लाते। इसका उद्देश्य ही है कि जो पेट्रोल, जैसे कि आपने कहा, वो बहुत कीमती है और अब हम इसको जितना बचाए उतना वो भावी अपनी जो नस्ल है उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मोटरसाइकिल हमें ये सामाजिक संदेश भी देता है। सर, दो और ऐसे इंशाया है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, आईने में और चमचा। तो इन दो, जैसे कि आईने में और चमचा, ये तो बहुत ही अलग ही मुझे लग रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में जरा हमको बताइए।
दोनों को एक साथ ना लेते हुए हम लेते हैं इसको एक एक करके। पहला है आईने में। तो यूसुफ नाजिम, मैंने इससे पहले भी नाम लिया था कि यूसुफ नाजिम हमारे दौर के जो चार बड़े इंशाइया निगार हैं, मिजा निगार, इंशाइया निगार, तो इनमें यूसुफ नाजिम बहुत उन चारों में एक हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके मुश्तबा हुसैन का नाम लिया मैंने, शफीक फरहत का नाम लिया, उसमें यूसुफ नाजिम एक हैं। ऐसे ये तो यूसुफ नाजिम का अभी अभी इंतकाल हुआ, मुंबई में रहते थे वो, मुंबई। तो बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी उर्दू जुबान अदब पर। जुबान अदब पर क्या, वो खुद चूंकि अदब के आदमी थे तो जुबान अदब की तो बात ही नहीं, लेकिन जो इंशाइया और मिजाह का, खास मिजाह के लिए मशहूर थे। पहले उन्होंने शायरी से शुरुआत की लेकिन शायरी में नाकाम हो गए तो फिर मिजाह की तरफ आ गए, और मिजाह की तरफ आए तो उसमें कामयाब हो गए, तो एक कामयाब इंशाइया निगार हो गए। तो यहां उन्होंने जो आईने में, तो आईने में जो दिखाई देता है इंसान को, आईना क्या है? आईना जो है वो इंसान का अक्स है। इंसान खुद अपने आप को आईने में देख रहा है। एक मैं यहां बोलना मुनासिब समझूंगा कि आईना क्या है। आईना ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو دھرم میں بھی پرتیبمب عکس اس کو کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک آئینے میں ایک آئینہ مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے نا تھوڑا سا داغ لگا ہوا ہے, تو آپ بھی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے, ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے, کہ وہ بھی بتا دے گا کہ صاحب یہ ہے تھوڑا سا ہے نا آپ کو, چونکہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا نا تو آپ کا اینگل جو وہ دیکھ رہا ہے, میرا اینگل یہ نہیں دیکھ رہا ہے, تو آپ بتا رہے یہ یہاں پر تھوڑا سا لگا ہوا ہے ہٹا دو, لیکن آپ ہم برا مانتے ہیں اس کا. اس لیے کوئی آئینہ کوئی کسی کا آئینہ بنتا نہیں آج کل. انہوں نے اس کو پوائنٹ بنایا ہے کہ آئینہ آئینے میں مجھے کیا نظر آتا ہے. تو پہلے کے لوگ بتا دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خلوص ہوا کرتا تھا کہ صاحب یہ چیز جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل کسی جو بہت کڑوا ہے اس کو کڑوا بولنا بھی ایک حکمت سے بولنا چاہیے کہ تھوڑا سا اگر مجھے بولنا ہے کہ یار صاحب آپ تو بہت ہی خراب ہیں, خراب ایسا بول ہی نہیں سکتے,
صحیح بات,
لاکھ وہ خراب ہو ہے نا. اگر کوئی کہ بدمزاج ہے تو کہہ رہے صاحب کیا بدمزاج ہیں آپ, تو برا لگ جائے گا اور وہ خوب مارے گا. تو اس کا بولنے کا طریقہ ہے, سمجھانا بھی اگر ہے تو سمجھانے کا اس کو طریقہ ہو, ہے نا, کہ صاحب تھوڑا سا اگر آپ مزاج کو تھوڑا سا بدل لیں اور اس طرح سے اگر کر لیں تھوڑا سا نرم مزاجی آ جائے آپ میں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو کیا ہوگا کہ اس کو برا بھی نہیں لگ رہا اور ہم اپنی بات کہتے رہے ہیں, مطلب وہی نکل رہا ہے, لیکن اچھے ڈھنگ سے بولا جائے,
صحیح بات
ہے نا, کہ کہتے تو ہیں وہ بھلے کی, کہتے تو ہیں وہ بھلے کی لیکن بری طرح,
بری طرح
تو بھلے کی کہہ رہے ہیں لیکن بری طرح تو کوئی فائدہ نہیں اس کا, تو بھلے کی کہو لیکن بھلے ہی طریقے سے کہا جائے. تو یہی مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے کہ بات ہے کہ آئینے میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ کیا اس کو دکھائی دے رہا ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو اس میں انہوں نے آئینے کے اندر ہی وہ طریقے بتائے کہ جب آدمی کھڑا آئینے کے سامنے کھڑا ہے تو مزاحیہ انداز میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی آئینے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ اسٹائل میں ہے, کبھی کوئی ایسے یہ لگا کے دیکھ رہا ہے, کوئی بالوں کو ہاتھ لگا کے کوئی ادھر سے گھما رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ کوئی سنگر ہے تو وہ یوں کر کے آئینے کے سامنے گا رہا ہے, جبکہ سنگنگ کا اور آئینے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ آئینے میں دیکھے کہ میرا منہ کیسا بن رہا ہے. تو اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں کہ آئینے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ایک آئینے کی قسم انہوں نے وہ بھی بتائی جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے, اب نئی نسل نے پتہ نہیں دیکھا نہیں ہوگا, میلوں کے اندر ایک آئینے آتے تھے وہ ایسے کہ جس میں ہمارے منہ آڑے ٹیڑھے ہوتے تھے, تو یہ بھی ایک آئینے کی قسم انہوں نے بتائی کہ اس کے اندر ایسا دکھائی دیتا ہے.
تو اس انشائیے کے مطابق, انشائیہ نگار کے مطابق, جس طرح ہم دوسرے کے دکھ درد دوش دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے بتائے کہ اس کو جلیل نہ کرے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں آپ کا دکھ درد دیکھوں تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد بھی کر سکوں, یعنی آئینہ ایک دوسرے کو من کو جاننے کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا, اگر اس طرح کا برتاؤ ہم کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا, کیونکہ آج کل ایسے بہت ہو گئے کہ ہمارا جو من ہے وہ اتنا کٹھور بن گیا ہے کہ دوسرے کا درد ہم جانتے سنتے لیکن آنکھوں سے پانی نہیں آتا, تو اتنا ہم کٹھور ہو گئے. تو یہ آئینہ انشائیہ جو ہے وہ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ دوسرے کے درد دکھ درد کو بھی سمجھو اور اس کو بنا ذلیل کیے اس کے جو دوش ہے وہ بھی بتاؤ. سر دوسرا جو انشائیہ ہے چمچا, اس کے بارے میں ذرا ہمارے اسٹوڈینٹس کو بتائیے.
چمچہ جو انشائیہ ہے, جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پکانے والے چمچے سے نہیں ہے.
صحیح بات,
جو اسٹیل کا چمچہ جو آپ کے ہمارے کچن میں ہوتا ہے جس سے ہم لوگ کھاتے ہیں کچھ, یہ تو یہ چمچہ نہیں ہے. لیکن یہ چمچہ جو سیاسی چمچے ہوتے ہیں, جو کہیں آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں ایک صاحب ہوتے ہیں, صاحب کا ایک چمچہ ہوتا ہے, یا کہیں کسی لیڈر کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب کا چمچے کو عرف عام میں پی اے کہا جاتا ہے نا. تو انہوں نے اس چمچے کی بات کی ہے کہ چمچہ, کمال الدین صاحب کا لکھا ہوا یہ انشائیہ ہے اور انہوں نے چمچے کی ضرورت پر بہت روشنی ڈالی ہے اس پر کہ چمچہ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو اصل میں یہ چمچہ ضروری ہونا, اگر یہ کہا جاتا ہے کوئی اگر یہ کہے کہ چمچہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر جگہ چمچے ہونے چاہیے, بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چمچے یہ کیا ضروری ہے. آپ تھرڈ پرسن کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں تو آپ براہ راست ڈائریکٹلی کام کیوں نہیں کرتے ہیں, کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟
برابر
بھائی, چمچہ جو ہے دیکھیے, کسی ایسے जो मीडिएटर होता है बीच में, एजेंट जिसको हम कहते हैं, मीडिएटर नहीं कहेंगे हम एजेंट कहेंगे उसको, तो एजेंट की जरूरत क्यों पेश आ रही है? मैं और आप डायरेक्ट क्यों का एक क्यों वो नहीं होता है कि भी एक बड़ा लीडर है और एक उसका वोटर है, तो वो डायरेक्ट दोनों के दरमियान क्यों नहीं होता कि साहब हैं क्या, नहीं कल आना, नहीं परसों आना, ये सब जो चल रहा है, तो वो ये बीच का चमचा जो है, साहब होंगे भी अंदर तो वो आकर बोलता है कि नहीं,
सही बात।
तो ये सब जो है, और ये हर जगह है, अगर एक मैंने बहुत सारे जिंदगी में ये चमचों की उन्होंने दिखा दी है, वो हर जगह है, कहीं भी, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्टर बिल उसका पास करवाना है, तो जब तक वो बीच का जो चमचा है वो उसको पैसा देकर वो साहब को ना पहुंचवाए, तब तक वो उसका बिल पास नहीं होता है। तो हर मैदान में यही हो गया, चाहे आपको एडमिशन करवाना है, अगर आप हम तालीम के मैदान की बात करें, तो अगर स्कूलों में, कॉन्वेंट में अगर आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो वो बीच का जो एक वो आदमी होता है बीच का,
सही बात,
तो वो अगर उसको जब तक वो अपना हिस्सा रखेगा और फिर वो आगे तक वो पहुंचाएगा। अगर आप 10,000 के देते हैं तो वो 2 अपने रखेगा, 8 वहां पहुंचाएगा, और इस तरह से वो, लेकिन उसमें गारंटी उसको, ये एक आम आदमी क्या समझता है कि चमचा हो इसलिए जरूरी है कि उसके बगैर काम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसको जो ऊपर का पोस्ट है उसको वो पटा ले रहा है, ये एक सोच है आम आदमी की, ऐसा होता नहीं,
ऐसा नहीं होता।
जिस तरह से एक खुदा के और बंदे के दरमियान, ईश्वर के और उसके मानने वाले के दरमियान, फॉलोअर के दरमियान कोई तीसरे आदमी की जरूरत ही नहीं,
सही बात।
तो इस तरह से दुनिया में फिर ईश्वर ने कोई चीज भी ऐसी नहीं रखी कि भी जो आदमी खुद ना कर सके,
सही बात।
जितने कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने बीच में किसी बीच के जरिए के बगैर कामयाबी हासिल की है। फिर हम लोग आदि क्यों हो गए, पूरा उसमें यह बताया गया है कि हम हर मामले में, हर काम में, यहां तक के अगर राशन कार्ड बनवाना है तो भी एक चमचा है, जिसको कुछ नहीं आता वो अंगूठा छाप है, लेकिन वो तहसीलदार के पास जाकर वो भाई चलो 500 रुपये तुम, 100 ये रखता, 400 तहसीलदार को देता है, यार एक इसको के कोई भी हो वो, जो भी जहां भी, लेकिन बहरहाल, तो इस तरह की हम मिसालें देखते हैं। तो यहां इस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, यहां पर तंज किया उन्होंने कि इस तरह के ये सब नहीं होना चाहिए दरमियान में, जो दरमियानी लोग जो होते हैं, असल में वो आम आदमी को, वो जो बड़े ओहदेदार होता है, वो उसके और इसके दरमियान की रुकावट होते हैं ये लोग,
सही बात।
उन्होंने ये कहना चाहा है।
तो इस इंशाय में जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छी तरह से बताया कि इन चमचों को बढ़ावा देने वाले हम लोग ही होते हैं।
जी जी बिल्कुल,
हम चाहते हैं कि मेरा काम जल्द से जल्द हो, भले 2 पैसे ज्यादा खर्च हुए तो चल जाएगा, लेकिन और मैं तकलीफ नहीं उठाना चाहता, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, उस समय पे नहीं जाना चाहता, और मैं खुद चमचों को फिर हम लोग बढ़ावा देते हैं
और फिर रिश्वत भी देते हैं
और वो भी चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इस इंशाय बताए कि बढ़ावा देने वाले भी हम लोग है और इस प्रवृत्ति का निषेध करना चाहिए। सर मैं जिक्र करूंगा आरटीआई का इसमें कि जो अभी आरटीआई माहिती अधिकार जो है, हम किसी भी सरकारी ऑफिस से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी के इतना फंड आया हुआ है और वो किन किन लोगों को दिया हुआ है तो आपको चमचे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बेशक बेशक,
तो ये बहुत अच्छा है कि ये जो आरटीआई और इस जो इंशाया इसका जो रिलेशन मैंने अभी जो लगाया, तो मैं ये चाहूंगा कि हर व्यक्ति को ऐसे चमचों से बचना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वाकई में जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इंशाया एक आईना है, वो हमको बहुत सिखाते हैं, और हम अगर उस नजरिए से उसे पढ़े तो जिंदगी में बहुत बड़ी अच्छी सीख हमको मिल सकती है, और जिसका फायदा ना कि केवल अपने आप को होता है बल्कि पूरे समाज को होता है। तो मैं ये आपका जो संदेश है मुझे विश्वास है कि वो अच्छी तरह से हमारे तलबा तक पहुंच गया है, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच गया है, और उसका फायदा वो अपने असल जिंदगी में लेंगे, और इस पूरे विषय को ना कि केवल किसी परीक्षा को पास करना है या डिग्री हासिल करना है उस नजरिए से ना देखे, बल्कि उसके अपने असली जिंदगी में कैसे उसका इस्तेमाल करे, कैसा प्रयोग करे, और अपनी और औरों की जिंदगी।
मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा,
हाँ,
कि ये आपने मैसेज की बात की है, तो मैसेज पर मुझे कि आपने जो आरटीआई का जिक्र किया है, 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आरटीआई एक्ट जारी किया था, आज उसको 2005 से 2014 9 साल होते आगे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, और किसी भी मैदान में आपको किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझना पड़ेगा। जब आपको काम करना है और उसके चमचों से बचना है, तो इसके लिए आपको, आप पहले ही अगर हिम्मत हार देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा. मुझे अपना एक शेयर मुझे यहां कहना महसूस होता है कि मैंने कहना चाहिए कि कौन कहता है, कौन कहता है कि मुश्किल की तरफ जाता है.
क्या बात,
ये वो रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता
क्या
है.
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
और ये आखिर में जाते जाते भी कि आप लोग भी इसी हौसले से, जिस हौसले से मेरा एक शेर मैं के साथ बात खत्म करूंगा कि और थोड़ा सा बिखर जाऊं यही ठानी है.
और थोड़ा सा बिखर जाऊं
यही ठानी है जिंदगी, मैंने अभी हार कहां मानी है.
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर. और अगर इस शेर के आगे अभी कहने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मेरे ओर से, हमारे स्कूल की ओर से और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इच्छाइयों के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी जानकारी दी. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जानकारी के बाद उनका ये जो कोर्स है वो पढ़ने में, उसे समझने में और उसको अपनी परीक्षा में उतारने में उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी. वो जाएंगे इंशाइया के बारे में. और मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद.